अपने देश में जाट कहते हैं, उसको समी के वृक्ष के वहां बंधा हुआ है। तो वहां मुर्दे रहते हैं, कौन जाए उन शमशान के बीच में, भय लगता है। तो अरस को शमशान में ले गए, नजदीक में ही था, अरे सारे अस्त्र शस्त्र सारे दिख रहा है, ये भीम की गदा है, ये प्रधान समझो कि धीर की आपने तलवार है, ये मेरी गांडी धनुष है, ये मेरे बाण है। तो सब हथियार लेकर के रथ में रखे और कहा कि एक काम कर, मैं तो बनूंगा योद्धा और तू रथ हाथ, देख तुम्हारे को मैं दिखलाऊं। तो उसके मन में हिम्मत आ गई, जब अर्जुन है तो अब देखेंगे जो कुछ होगा। अब चले उनके सन्मुख, चले तो अर्जुन ने संग बजाया, पहले संग बजाना से ये तो एकदम मूर्छित हो, उत्तर कुमार तो मूर्छित हो। थोड़ी देर के बाद मूर्छा जागी तो उत्तर ने कहा कि देखो जब आप संग बजाओ तो पहले से कह देना जो मैं अपने कानों में अंगुली दे। तो अर्जुन जब जब रथ बजाता, जब जब शंख बजाता था और वो एक प्रकार से खोल दिया करता था, शंख बजाता था अंकों में आंगली दे लिया करता था। सुन की ध्वनि सुनने के साथ में भीष्म और द्रोण को समझिए कि ये देव का शंख है, अर्जुन का शंख। वह लोग चर्चा करने लगे कि रथ के मां तो एक दुगाई बैठी है, अर्जुन खोजे का भेद रखता था ना, और उत्तर कुमार जो है तो सारथी बनकर के रथ हाक रहा है। दूसरे ने कहा कि भीतर में जो बैठी थी वो राजा विराट की लड़की है। तो उत्तर कुमार एक प्रकार से अपनी बहन को साथ में लेकर हमारी भेंट देने के वास्ते आ गए कि भाई एक प्रकार से आप हमारे पर नाराज मत हो और हमारी बहन को तुम ध्यान, ये मतलब है। से बोले ये डोड़ा लेकर आते, बोले डोड़ा कैसा है, तो डोड़ का मालूम हो जाएगा आगे जाके कैसा डोड़ा है। कितने इतने अर्जुन के बाण आने लगे, तो अर्जुन भीष्म और द्रोण और जो अपने गुरुजन है उनके चरणों में बाण मारे, माने बाणों से नमस्कार करते। कितनी दूर से और क्या उपाय, बाणों के द्वारा नमस्कार किया। और फिर हुक्म लेना चाहते हैं समझो, तो अब पानी तो वहां तक सुनती नहीं, इस वास्ते ऐसे बाण माए कि जो सन्नाट करते हो कानों के पास निकलते कि महाराज आज्ञा दो हमारे को युद्ध के लिए। तो उसके बाद के जिसके मां इन्होंने बाणों से उत्तर दिया और दोनों का नहीं युद्ध होने लगा। दोनों का नहीं युद्ध होने लगा तो एक तरफ से समझो कि आपने आग्नेयास्त्र चलाते हैं आग बरसती आकर के, और दूसरी तरफ से वारुणास्त्र चला देते हैं जिससे शांति हो जाती है, तीसरी तरफ से वायुवास्त्र चलाते हैं जिससे बाद ये जो आपने बाद उड़ जाते हैं। इसी प्रकार से एक दूसरे का प्रतिकार करते हुए दिव्य बाण चलाने लगे। ये दिव्य बाण है जिससे अलौकिक चीज प्रकट हो जाती है। आखिर के बीच के वहां अर्जुन ने मोहनास्त्र चला दिया, मोहनास्त्र के चलाने के साथ सब मूर्छित होकर के गिर गई। मनुष्य क्या, पशु क्या, और समझो कि रथी अपना घुड़सवार पैदल सब के सब मूर्छित हो गए, एक भी बाकी नहीं रहा। उस समय के बीच में अर्जुन ने उस उत्तर को कहा कि उत्तर ये सब मरे हुए हैं, माने मरे हुए के तुल है, तो तुम अब किसी किस पगड़ी का चिल्ला उतारा तो उतार ले, तो जितने राजा लोग हैं सब मरे हुए के तुल है, बेदर्शन है। किंतु ख्याल करना भीष्म द्रोण के पास नहीं है, वे मेरा कायदा रह करके चुप हैं, उनको मूर्छित करने की मेरी सामर्थ्य तो उनसे तो दूर रहना चाहिए, और सब मरे हुए तुल है। तो चिल्ला उतार करके वो ले आया, रथ में आकर के बैठ गया, ग्वालियों को हुक्म दे दिया कि गवें जो है तो अपने वापिस ले चलो, और गवें छेड़ दी, और ये अपने गवों को लेकर के लौट करके वापिस आ रहे। एक मुहूर्त के बाद उनकी मूर्छा सुध जाती, बस दुर्योधन और सब मारो पकड़ो मारो पकड़ो, कौन है क्या बात। तो फिर भीष्म जी ने कहा कि कौन है, अर्जुन है। बोले चलो लड़ने के लिए। बोलो वही अर्जुन वही हम लोग, यदि अपमान कराना हो तो जाओ, है थारी सामर्थ किसी की अर्जुन के सामने लड़ने की, खाली बात बनाते हो। अरे अब तुम लोग कहां गए थे, अर्जुन अभी तो अकेला ही अर्जुन था, अब तुम सबको मूर्छित कर करके अरे अपने गांव को अपने वापिस ले जा रहा है, और फिर कहते हो चढ़ करके लड़े, जा तेरे दोस्त सिरे तो लड़। दुर्योधन ठंडा हो गया। दुर्योधन ने बोला कि महाराज जब पता लग गया कि पांडव है और अर्जुन है तो इसको फिर 12 वर्ष का वनवास दिया जाए। बोले हिसाब तो देखो, तो हिसाब लगाया तो चंद्रमा से थी तो 13 वर्ष होकर के 4 महीना अधिक हो, और समझो कि सूर्य मास के तक गिनना करी तो भी 13 वर्ष हो। बोले भाई अब तो 13 वर्ष तो हो गए, किंतु अर्जुन की संख्या के मां 3 दिन कम थी, कोई प्रकार से थी, पांडी का फर्क उस वक्त में भी था। तो भीष्म जी ने कह दिया कि 13 वर्ष हो गए सूर्य मास से भी और चंद्रमा से 4 महीना और कितने दिन अधिक हो गए, अब हमारा कोई उपाय नहीं रहा, इसको फिर 12 वर्ष वन में भेजें। तो ठीक है, अर्जुन जो घर में प्रवेश होते समय में पुत्र को कह दिया कि देखो हम लोग 3 दिन छिप कर रहे, 3 दिन के बाद तो प्रकट हो जाओ, 3 दिन तक हमारा परिचय नहीं देना। सब बता दिया उसको कि तुम्हारे पिता को जो चोपड़ खिलाता है वो तो राजा युधिष्ठिर है, तुम्हारी माँ की जो सेवा करती है वो सेंद्री के नाम से वो द्रौपदी है, अरे जो तुम्हारे रसोई बनाता है जिसका नाम बल्लभ है वो एक प्रकार से भीमसेन है, और घोड़ों के सर्वदारों के ऊपर नकुल है, और गायों की ग्वालियों के ऊपर वो सहज है। सब बता इस प्रकार से हम आदमी छिपकर तुम्हारे यहां नौकरी कर। तब बात हुई, इधर के बीच के वहां पढ़ाई आई, कहा उत्तर कुमार की विजय हो गई, उत्तर कुमार की विजय हो गई। विराट समझो कि खुला अभिष्ट माता, ओहो मेरा पुत्र कैरवों को जीत लिया अकेला, वाह वो पासा गेर से तुम्हें बोले जय उत्तर कुमार की, जय उत्तर कुमार की। तो राजा जिसे जब पासा गेरते हैं तो कहते हैं कि जिनका सारथी ब्रह्मदा है उसके जय में क्या हो। अर्जुन जिनका सारथी, ये एक बार कहा, 2 बार कहा, 3 बार कहा तो राजा विराट उसको बर्दाश्त नहीं करता। पासा उनके हाथ में था कि जिससे के मुंह के ऊपर मारी तो नाक घा हो गया और खून गिरने लगा। वहां द्रौपदी खड़ी थी, उसके हाथ में सोने का कटोरा था, स्वाभाविक ही राजाओं के काम के वास्ते इस बस लेना ले जाने के लिए स्वाभाविक रहता ही है, तो झट वह दौड़ी और उसके खून को गोदने लगी राजा जिससे के खून। ये बात को राजा युधिष्ठिर जानते हैं और द्रौपदी जानते हैं और कोई नहीं जानता। राजा विराट ने कहा कि सुरेंद्र जी तू क्या कर रही है, इस ब्राह्मण के खून को तू बोस रही है, कोई राजा युधिष्ठिर थोड़ा ही है जो जमीन में गिरने से वहां 12 वर्ष काल पड़े। बोला महाराज मेरे लिए तो युधिष्ठिर जी, ये ब्राह्मण है जिसका मेरे लिए युधिष्ठिर जी है। विराट ने सोचा कि इसकी प्रसन्नता के लिए ये बात कह दी, ब्राह्मण की स्तुति के लिए, उसके ध्यान में ये नहीं आया कि हिस्ट्री है, बस एक प्रकार से थी। लोग निकली गई, युधिष्ठिर ने सोचा कि यदि अर्जुन यहां आ जाएगा और मेरे खून निकल का देगा तो विराट को और उत्तर कुमार को सबको मार डालेगा। क्यों, उसके ये प्रतिज्ञा है कि राजा जिसका खून जो जमीन में गिरा देगा उसको बिना ज्ञान से मारे नहीं लूंगा, ये मेरी प्रतिज्ञा है एक प्रकार से। तो अर्जुन की प्रतिज्ञा मिथ्या होगी नहीं। तो जिसने एक सिपाही को कहा कि तुम उस वृंदा को कह दो कि लड़कियों को पढ़ाने के लिए तुम परवारे समझो कि आपने वनवास में चले जाओ, सभा में मत आओ, समझो कि मंत्री का हुक्म है। ठीक है, वो से जा कह दिया, अर्जुन को ये पता नहीं, अर्जुन अपना चलाएगा। उत्तर कुमार आया, उत्तर ने देखा कि राजा युधिष्ठिर के नाक के फूल पड़ रहे। पिता से पूछा कि इस ब्राह्मण के ऐसा खून पड़ा है, क्या कारण? बोलिए दुष्ट एक प्रकार से थी, वृंदा की प्रशंसा करता था, मैं बर्दाश्त नहीं कर सका, मैं पासा गिरता था तो कहता उत्तर की, उत्तर कुमार की जय, उत्तर कुमार की जय। और जब मैं तुम्हारी जय बोलता तब ये कहता कि जिसका साथ सारथी वृंदा है तो उसके जय में क्या संशय। अब उस खोजे की प्रशंसा मेरे पास नहीं सुनेगी, बोले महाराज आपने बड़ा भारी अपराध किया, ये जो विजय है वो वृंदा के बर्दाश्त है, किंतु तीन दिन तक इसका मैं भेद आपको नहीं बताऊंगा, तीन दिन के बाद इसका भेद मैं आपको बता दूंगा। मैं जो कैरुओं से विजय पाई है उसमें प्रधान कारण अशोक वृंदा है, मेरी सामर्थ्य की बात नहीं, मेरी विजय नहीं है, वृंदा की विजय है, तो इसके कारण ही हमारी विजय है। से क्षमा प्रार्थना कर तो हाथ जोड़ के कि महाराज मेरा अपराध हो गया, मेरे से जो आपके पास की लगी तो उसको आप क्षमा करो, माफ करो, इस प्रकार से काम मेरे गलती से हो गए। तो महाराज तो क्षमा मान जिसे कहते तो कोई क्रोध कभी था ही नहीं, कोई बात नहीं, बोले आप कोई बात का विचार नहीं करें, जो बात हो गई कोई बात नहीं। तो अब हम लोगों को क्षण करना चाहिए, कैसी अद्भुत लीला थी। एक दिन की बात है कि वहां चित्र नाम का एक दाना रहता था और द्रौपदी बड़ी सुंदर थी, तो इसको देख करके के और वो चित्र दाना अपनी जो बहन है उसको कहा कि तेरी जो दासी है इसको तुम मेरे महल में भेजा कर। तो कहा कि चिरंजीव तू मेरे भाई के महल में तुम जा, कोई कोई भानस है भेज देती। वो एक दिन गई तो उसका हाथ पकड़ करके किसी बलात्कार करने लगा, तो हाथ छुटा करके और झट वो सभा के मार इस राजसभा के बीच के मां ये कुछ विराज नहीं कर सकेगा। और पिछु पिछु पीछे आया और राजसभा के बीच के मां समझो कि जो द्रौपदी है उसको जमीन के वहां पटक करके उसके लात मारते हैं और कहा कि हे सुरेंद्र जी ये विराट जो है ये तो कथन मात्र का राजा है, वास्तव में राजा मैं हूं, मैं जो करूंगा सही होगा, ये तुम्हारा राजा कुछ भी नहीं कर सकता मेरा। तू जो भागकर कहते राजसभा को आश्रय लियो है ना, तो ये वास्तव कुछ भी नहीं, तू कहीं चली जा मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं। तो वो फिर युधिष्ठिर के पास में देखो महाराज मेरे कोई भी अपराध नहीं है, अरे ये दुष्ट मेरे पीछू पड़े हुए, अरे यो कहे कि मैं तुम्हारी बेइज्जती कर करके छोड़ूंगा, तो ऐसी परिस्थिति के बीच के मां महाराज समझो कि आप लोगों को जो कर्तव्य है उसको पालन करना चाहिए। मैं एक परिव्रता स्त्री और बिना अपराध के इस प्रकार से तंग करी जा रही हूँ, अरे ये दुष्ट मुझको इस प्रकार से तंग करता है और आप लोग इस बात को देखते हुए इस दुष्ट को किसी दंड नहीं देते। महाराज युधिष्ठिर ने कहा कि हे सुरेंद्र जी जो पतिव्रता स्त्री होती है वो तो खुद अपने पतिव्रत धर्म के बल से अपने धर्म की आप ही रक्षा कर लेती है, उसको दूसरे की सहायता लेने से क्या आवश्यकता है। दूसरे पतिव्रत धर्म के बल से अपनी तू रक्षा कर ले। द्रौपदी ने सोचा कि मेरा जो पतिव्रत जो धर्म है वो इस प्रकार से कोई दाना ने मारने के लिए थोड़ा ही, वो एक प्रकार से थी। दूसरे दिन भीमसेन के पास में गई और भीमसेन सोचा हुआ था, उनके आंसू पड़े मारे दुख के और भीमसेन की छाती के ऊपर भीमसेन की आंखें खुली, द्रौपदी को रोते हुए देखकर बोला सिंधी क्यों रोती है। तब वो रोकर कही कि आप जैसे वीरों की पत्नी मैं होकर के आज मैं सिंह की सिंहनी होकर के और सिहाइयों के द्वारा एक प्रकार से अपने खींची जा रही हूं, आप लोगों के जीते हुए आप लोगों के रहते हुए और मेरी याद असाए वो चीतक जो दानो है जिसको आज कई दिन से मेरे ऊपर बलात्कार करने के वास्ते सुलियो हुआ है। और आपने सुना ही होगा कि सभा के बीच में दुष्ट ने मेरे लात मारी और ये मेरे ऊपर रवाब जमाया कि यहाँ कोई भी मेरे ऊपर नहीं है, मैं जो करूंगा तो ही होगा। महाराज अब कुछ समय मैं अपनी ज्ञान कैसे बचाऊ, मैं समझो अपने प्राणों का त्याग कर सकती हूँ कि उनका अपने धर्म का त्याग नहीं कर सकती। भीष्म ने उसके आंसू पोंछे और कहा प्रिय तुम चिंता मत करना, वो दुष्ट मेरे द्वारा मारा जाएगा, वो तुम्हारे को बुलाता है। हाँ बुलाता है, तो आज रात को तुम टेम दे दो कि मैं रात के बीच के मां जो सायंकाल में मैं तुम्हारे पास में आऊंगी नाच घर के मां नाच घर आपने हाँ और सायंकाल का समय ठीक है। और भीमसेन सायंकाल के पहले ही उस नाच घर के मां जाकर के बैठ गया, मानो संध्या गायत्री करता हुआ जब ध्यान के अंदर। और सायंकाल के वक्त भीमसेन तो वहां बैठे ही है और बस चित्तक दाना जो है तो वो अपने उसको प्रतीक्षा कर रहा है जैसे कोई मौत की प्रतीक्षा करे। और वो एक प्रकार से मदरा की बोतल लेकर पहुंच महाराणी है कह कि मेरे एक प्रकार से भाई को ये मदरा की बोतल तो पहुंचा क्या करे बेचारी दासी होकर के। और वो मदरा की बोतल लेकर के आई और बोतल तो ले ली और झट उसका हाथ पकड़ा और खींचने लगा कि तू मेरे साथ में इकरार किया था वो पहला ही जाकर के किचक से ये संदेशा भेज दिया कि आज रात्रि के समय एक नाच करके मैं आपसे मिलूंगी, तो बस वो मिलने आई है, सायंकाल का वक्त हो ही गया। तो वो उससे झपटा झपटी करने लगी कि तो पास के मैं भीमसेन बैठे। भीमसेन ने कहा अरे भैया दूसरे की हस्ती के ऊपर ऐसा बलात्कार नहीं करना चाहिए, समझा। बोला तू उपदेश देनिया कौन, बोले न्याय की बात है उचित बात है, ये दूसरे की स्त्री है इसके ऊपर तुम बलात्कार करते हो तो ये तुम्हारा करना उचित नहीं है। तो वो तो एक राजा बना बैठा है, बोले कौन बोलने वाला तुम देखे ये तो रसोया हमारा यहाँ। अरे बोला एक प्रकार से निकले यहां से ऐसा, तो बोले मैं ऐसा अत्याचार नहीं देख सकता। बोले नहीं देख सकता तो पहला तू आ। तो दोनों की अपने झटर हो गई और कभी वो उसको मारता है कभी उसको पटकता है कभी उसको पटकता है। आखिर के बीच के मां समझो कि वहां के आसपास के जो वृक्ष थे वो वृक्षों से लड़े, जो कोई पत्थर थे उनसे लड़े, सब समाप्त हो गए, मलजूल करने लगे। आखिर के बीच के मां समझो कि भीमसेन ने उसे उनको मार डाला और उसकी जो नार है वो उसके घर के मां अपने प्रवेश करा दी और पैर शुक्र करके कर दिया, गिंडी की माफत गोल बना करके एक सभा मंडप का खंबा जो था उसको उखाड़ करके ऊंचा करके नीचे से द्रौपदी को कह दिया तुम चल और आप अपने ठिकाने जाकर सो गया। प्रातःकाल हुआ, प्रातःकाल हुआ तो एक प्रकार से सब लोग आए बोले कि इससे को कोई मार गया, इससे को कौन मार गया। तो राखी से पूछो, रानी ने कहा कि मैं बोतल देख करके के सरेंद्र जी को वहां पे गया था, उसको मालूम होगा कौन मार गया। तो उससे पूछा इसको कौन मार गया, बोले मेरे पांच पति है गंधर्वों के समान, मेरे पर कोई बुरी दृष्टि करता उसको मार जाते, तो यो मेरे पर बुरी दृष्टि करी इसीलिए पांच गंधर्वों में एक मेरा पति जो रहा इसको मार गया। अब उसका 105 चेले थे सब इकट्ठे हुए, मरने वाले के पानी वाला पाई कठा हुआ तब इकट्ठे हुए, बोले देखो पीछे मरता मरता कि सुरेंद्री के वहां मन लगता था, मरा तो मरने के वक्त भी सुरेंद्री में मन था तो यह उसकी मन से असली हो गई, तो पीछे के साथ साथ के बीच में इसकी भी दाग क्रिया कर क्योंकि पति हो गया तो पति गल सती होनी चाहिए, अरे मूर्खो सती अपनी ज्यादा होती है उसको जलाया जाता है, अपने मन से जो कल्पना कर लिया उसके स्त्री और मन से ये कल्पना करने इसको साधना तो भसम कर दी। अब सुरेंद्र जी घबराई द्रौपदी, द्रौपदी भीमसेन के पास में गई, महाराज ये चर्चा हो रही है पर कोई चिंता नहीं चले ले जा तो तू चली जा मैं आऊं पचाड़ी, मतलब उसको अर्थी के बांध करके ले गए वहां
बड़ा भारी सीता का एक आपने समझो स्थल बनाया, उसके ऊपर आपने द्रौपदी को बढ़ाया और उसके गोद के वहां सीता को बढ़ाया और सब ठीक कर दिया कि अब उसके आग लगानी बाकी थी। भीमसेन अपने घर से निकला और निकल करके एक बड़ा भारी तालाब था, उस तालाब के ऊपर अपने वस्त्र निकाले और उसकी जो कीचड़ है वो सारे शरीर के मल भूत का रूप धारण कर लिया और वहां एक अपने वृक्ष था, साल वृक्ष बड़ा भारी लंबा चौड़ा, उसको उखाड़ा और उसको उखाड़ करके कांधे ऊपर धरा और कांधे ऊपर धर करके उसे पहाड़ के ऊपर खड़ा हुआ और पहाड़ के नीचे ही तुम जो शमशान भूमि और टकाल दी कि खड़े रहो खड़े रहो। द्रौपदी बोली के मेरे पांच पतियां में एक ही होगा, आप उसको देख करके सबके छक्के छूट गए और वो मार उठा उठा कर गिरा, एक तो एक को मारा गिरा दूसरे को मारा गिरा, बोले गिनकर 105 है तो समझो कि ये कोई बाकी नहीं रह गया, तो 105 जो थे सबको एकदम मार करके चुकी और सीता के साथ में 106 की लाश चल दी। 112 कितने था, 105 उसके चले थे, 106 की लाश चल करके उसके आग लगा दी। और फिर ये था कि तुम जाकर कोई कहे कि गुण गुण मार गया तो कह देना कि मेरा पति मार। अब हल्ला पूछा कि 105 जो अपने कितर थे कितने के जो चेले थे उनका फिर पति गंध लगाकर सबको मार गया, अरिया अब वापिस शहर को आ रही है तो सब दुकानदार लोग अपने निकी नार कर दी और तो देख रही वो देखे मरे जब एक दो छह दाने मारे। अब वो घर के ऊपर आई तो घर के ऊपर आई तो राजा विराट ने कहा कि श्रेंद्री क्या हाल, बोले हमारा हाल क्या है, जो मेरे पर बुरी दृष्टि करता है ना उसको मेरे पति आके मार जाती, मेरे पांच पति है जमीन के समान, वो एक प्रकार से एक पति को मालूम हुआ तो वो आकर करके अरे सबको मार डाला और आग लगा करके सबको खत्म। तो श्रेंद्री अब तुम यहां से चली जाओ क्योंकि शायद हमारी दृष्टि तुम्हारे पर कभी खराब हो जाए तो हम तो मारे जाएंगे बेमौत, तो बहुत दिन तुम यहां रही और अब तुम असर चली जाए कहीं दूसरी जगह जाकर नौकरी कर ले। बोले देखो महाराज अब थोड़ा दिन जो है बाकी है, थोड़ा दिन आपको रखना पड़ेगा और आप यदि नहीं रखोगे तो मेरे पति आप पर नाराज हो जाएंगे। उसको तो मार डालते मेरे पर, तो बेचारा देखा भाई ठीक है तो बुरी दृष्टि वैसे ही बनी हो। इस प्रकार से वो वहां तो पिछले दिन तक पड़ रही, सबको एक साल भर तक गया। साल बीतने के बाद प्रातःकाली राजा ठीक है देखो तो अपने राजा होकर के गद्दी पर बैठ गए और चारों भाई जो है वो कोई सफर करने लगे कोई चवड़ करने लगे और एक प्रकार से और सिंहासन के ऊपर द्रौपदी और राजा पर बैठ गए। जो सिंहासन राजा विराट का था उसकी जैसे पंच रत्न की झटकी आती है ऐसे तो बैठ। अब राजा विराट है उत्तर कुमारी भाई बोल क्या बात है ये अपने यहाँ नौकरी कर देते तो उत्तर ने सारी बात कह दी कि हमारा जी दूसरे या द्रौपदी है दूसरे नर्जुन नकुल कहे एक प्रकार से हम लोगों के ऊपर है, हम लोग उनके मातृत हैं इसलिए इनका अधिकार है बैठने का और इनकी कृपा से हमारी विजय हुई है। ये छिप करके रहते थे हमारे यहाँ एक प्रकार से, तो बोले अभी एक काम करो राजा विराट ने कहा कि देखो इस प्रकार से आप हमारे नौकरी करिए और छोटा काम हम आप लोगों से कराए हुक्म दे देते थे तो आप लोगों के भीतर में ये है जा ये छोटा काम इन्होंने हमारे से कराया तो हमारे पर गुस्सा रहेगा तो कहीं हमारे तो आप मार डाले, इसलिए हमारी ये प्रार्थना है कि हमारी जो लड़की है उसका उसके उसको मैं अर्जुन के साथ में जा सकूँ। अर्जुन बोला कि मैं तो उसको विद्या पढ़ाई है, मैं तो गुरु बन करके उसको विद्या पढ़ाई है तो मेरे तो वो लड़की के समान है, मैं उसके साथ में जा सकूँ कोई नहीं आपको ये काम करना ही होगा। आखिर मैं अर्जुन इस बात को स्वीकार नहीं बोले एक काम करो आपका मन में भाई है तो मेरा लड़का भी नहीं है उसके साथ में विद्या तो समझो मेरी पुत्र वधु होगी तो मेरी लड़की के समान ही रही तो ये नाता करके फिर अभिमन्यु के साथ मैंने तो प्रकार को उत्तर कुमार का निवास कर दिया। इस प्रकार का ये प्रश्न विराट नगर की माँ महाभारत में आता तो ये इसलिए आपको बताया कि राजा युधिष्ठिर कितने धर्मात्मा थे उसकी तरफ ख्याल करना चाहिए कि जिस देश के महाराजा युधिष्ठिर बात करते हैं उस देश की प्रजा धर्मात्मा होती है, जिस देश में राजा युधिष्ठ वास करते हैं वहां महामारी नहीं आ सकती, और राजा युधिष्ठ वास करने से वहां धर्म और समझो की शक्ति वृद्धि होती है, और छूने एक तो बात गिर जाए तो वहां 12 वर्ष का काल पड़े, और बात करे तो समझो की उस जगह के बीच में जमाना हो यानी धन धान की वृद्धि हो तो वहां धन की धान की गोधन की वृद्धि होगी। ऐसे महाराज युधिष्ठ जो है तो समझो की बहुत ही स्फूर्ति से परमात्मा को थे। महाभारत के वन पर मान लिखा है कि किस समय के बीच के महाराजा एक वन में गए तो एक दिन भीमसेन के आने में विलम्ब हो गया, तो भीमसेन को खोजते खोजते भीमसेन के पास पहुंचे तो क्या देखते हैं कि एक बड़ा भारी अजगर समझो पहाड़ के समान भीमसेन को पकड़ सका है। राजा ने पूछा भीम को, भीम ये क्या बात है? बोले महाराज जात ये अजगर कौन है मालूम नहीं, मैं इसके बसीभूत हो गया, तेरे में सब चार हाथियों का बल है। बोले सब मात हो गया। तो अजगर से कहा कि अजगर वे आप कौन हो, आपका परिचय दो, और मेरे भाई भीमसेन को छोड़ दो। बोले नहीं, मेरे अधिकार में आ गया, उसको मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं भोजन का भूखा हूं, उसको मैं खाऊंगा। बोले कोई शर्त है कि जिसको आप छोड़ सकते हो? बोले एक शर्त है कि मेरे पशुओं का अगर उत्तर देता है तो मैं छोड़ दूँ। तो बोले आप प्रश्न करो। तो वो से प्रश्न थे कि बोले जाति से ब्राह्मण है कि एक प्रकार से कर्म से ब्राह्मण है? तो उन्होंने कहा कि पूछा अजगर ने कि जाति का तो ब्राह्मण है और आश्रम उसके शुद्ध कैसे हैं, और जाति का तो शुद्र है और आश्रम जैसे ब्राह्मण के जैसे हैं, तो ब्राह्मण में कौन है? बोले जिनके आचरण ब्राह्मण से नहीं है और जन्म से ब्राह्मण है वो ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं, और जाति से एक प्रकार से शुद्र है आचरण उसके ब्राह्मण के हैं तो शुद्र शुद्र नहीं। तो और भी बहुत सी बात पूछी, हिंसा धर्म बड़ा है या सत्य बड़ा है? और कुछ जहाँ की माँ जिसमें प्राण जाते हो वहां से भी झूठ बोल दिया जाए तो कोई रोष की बात नहीं, दूसरों का प्राण बचाने के लिए। तो जितनी बातें पूछी सबका उत्तर दिया। फिर राजा जीत ने भी उनसे पूछा, वो भी जवाब दिया। आज तुमने भाई के विषय में जवाब सवाल होकर के अरे वो सब संतुष्ट हो गया। बोले राजन मैं तुम्हारे उत्तर से संतुष्ट हो गया, मैं तेरे भाई को मैं छोड़ देता हूँ। भाई भीमसेन को छोड़ दिया। भीमसेन को छोड़ करके अजगर ने अपने प्राणों का भी त्याग कर दिया। प्राणों से त्याग करने से उसके अजगर के शरीर में से ज्योति मिली, और वो ज्योति आकाश में जाकर के फैल एक देवता के रूप में वो ज्योति उसे आकाश में दर्शन दे दी। ऋषि ने हाथ जोड़ करके पूछा कि ये आप कौन, आप कोई देवता हो या आप कोई विद्यार्थी हो या कोई सिद्ध पुरुष हो या कोई यक्ष हो या राक्षस हो या किन्नर हो, कौन हो, मैं आपका परिचय जानना चाहता हूँ। उसने कहा कि तुम्हारे पूर्वजों के बीच से वहाँ ययाति का पिता जो नहुष राजा हुआ था वो मिली, मैं इस प्रकार से अपने स्रोत को चला गया था और स्रोत के बीच के वहाँ इंद्र जो है इंद्र इनके ऊपर आपत्ति आ गई थी, इंद्र के हाथ से ब्रह्मत्या हो गई थी, इसलिए इंद्र कमल वन में जाकर के ढूंढ गया था। तो इंद्र की गद्दी खाली देखकर ऋषियों ने और देवताओं ने इकट्ठा होकर के ये विचार किया कि किसको एक प्रकार से अपने इंद्र बनाया जा। तो सब लोग मिलकर के मुझको इंद्र बनाया, क्योंकि मैं राजनीति में कुशल था और तपस्वी था, धर्मात्मा पुरुष था, तो मुझको तो उन्होंने सब इंद्र बना दिया। इंद्र की कुर्सी पर बैठने से इंद्र के पद पर बैठने के साथ ही मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो उस राजपद को पागल, राजपद को पागल मेरी बुद्धि भ्रष्ट हुई और मैं एक प्रकार से इंद्राणी को हुक्म किया कि मैं इंद्र हो गया हूँ, अब मैं तुम्हारा पति हो गया, तुम्हारे महल में आऊंगा। तो इंद्राणी ने कहा कि मैं तो एक कोई गद्दी कैसे नहीं, कोई मैं कोई जैसा नहीं, मैं कोई अप्सरा नहीं, मैं तो पतिव्रता से हूँ, सबकी मेरा नाम है और मेरे पति के लिए मैं दूसरे के साथ सेवा नहीं कर सकती। तो बोला कि तुम नहीं कर सकती है तो मैं तुम्हारे पर व्यापचार करूंगा। तो वो बेचारे छोड़ करके देवताओं का गुरु दक्षिण के पास में गई और दक्षिण से पूछा कि मैं क्या करूँ। तो दक्षिण ने यह राज कि तू कह दे कि तीन लोगों पर आपका राज है तो सब चीजों को पाल के मैं जोड़कर मेरे घर में आए बस तुम्हारा काम आती है, ठीक है? तो सर कहा बजा कि आप मेरे महल में आना चाहते हो तो सब संख्या से खाल से जोड़ करके आप मेरे महल में आओ। ये सुन करके मेरे कहता मैं बड़ा खुश रहा कि अपना तो काम बन गया। अरे क्यों को बुलाया और बोला कि मेरी खाल की बेटी तुम मैं उनके महल पर ले चले और इसीलिए सोचे कि जब उसको इंद्र बना दिया घर तक इस पर है इसकी आज्ञा हमको मानी नहीं पड़ेगी क्योंकि हमारा बना हुआ राजा है। तो इस प्रकार से करने लगे आस्था करने लगे सफा शिविर करो शिविर करो ये कभी पाल की धोई सुनी महापुरुष को माफ कर दो तो उन्होंने कहा कि हमारा वचन मीठा नहीं होगा, तुम्हारे सिर के बीच में महाराज विचित्र हुए तो उनके दर्शन के प्रभाव से, वार्तालाप के प्रभाव से तुम पाप से मुक्त होकर के उत्तम गति को चले जाओगे। में बड़ा भारी पाती था, एक तो प्रश्न के ऊपर मैंने बलात्कार करने का विचार किया, फिर गहनों को पार के घेरा, पर फिर अलग से लात मारी, ये तीन बड़े बड़े अपराध हो गए, उसके कारण से मुझको सब नहीं सुनी। इस प्रकार से ये आपका प्रभाव है, आपके वचन से आपके साथ वार्तालाप करने से उन सब पापों से आत्मा मुक्त हो गया और अब लोग तुम गति को जा रहे हैं, और वो ये आपकी कृपा है। स्मरण करना चाहिए कि राजा युधिष्ठिर कितने धर्मात्मा थे, इतना भारी पापी, वो राजा युधिष्ठिर के दर्शन के प्रभाव से, वार्तालाप के प्रभाव से पापी भी पवित्र होकर उत्तम गति को चला।